आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन सहित 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब निगम द्वारा ही जेम पोर्टल के जरिए चयनित की जाएंगी आउटसोर्सिंग एजेंसियां। लखनऊ और कानपुर सहित आसपास के कस्बों के लिए 100-100 ई बसों को खरीदने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मिली स्वीकृति। नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर होगा इन बसों का संचालन। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया। तय समय सीमा में TET पास न करने पर शिक्षकों को छोड़नी पड़ेगी नौकरी। और नेपाल तथा भूटान के नागरिकों को पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे। निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसियों का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। उनका वेतन 1 से 5 तारीख तक उनके खाते में आ जाएगा। EPF और ESI का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था की अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ही निगम का गठन किया गया है।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए मंत्रि परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिया जाएगा।
लखनऊ और कानपुर सहित आसपास के कस्बों के लिए 100-100 ई बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। इसके तहत नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बेहतर होगी।
बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव आपको मंत्रि परिषद के समक्ष रखा था कि नेट कास्ट बेसिस पे प्राइवेट ऑपरेटर को हम लोग लाइसेंस दें और वो लोग अपने घाटा मुनाफा के बदौलत सरकार उनको कोई पैसा नहीं देगी, सिर्फ उनको एक वैधानिक सपोर्ट देते हुए ई चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुविधा देते हुए सारा का सारा खर्च प्राइवेट ऑपरेटर उठावे। इस स्तर पे नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मॉडल बोलते हैं उसको, उसपे प्रयोग के रूप में कानपुर और लखनऊ के 10-10 रूट सुविधा करने का मंशा है और उसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है।
कैबिनेट की बैठक में निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी मंजूरी मिल गई। नई नीति में 2020-25 की निर्यात नीति में सुधार करते हुए डिजिटल तकनीक और संरचना विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण और बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। कैबिनेट ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए रजिस्ट्री शुल्क 5,000 रुपए किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया। बैठक के दौरान शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए अब जनता से विभिन्न मुद्दों पर राय ली जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल और QR कोड तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि गांव और शहरों में यह QR कोड लगाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को इसे 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा। तय समय सीमा में टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के सभी लाभ उन्हें मिलेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
शीर्ष अदालत का ये फैसला देश भर के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं की शिक्षकों पर सामान्य रूप से लागू होगा। ये फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी उत्तीर्ण किए बगैर सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी टीईटी पास करना होगा। पीठ ने अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार सहित कई अन्य की अपीलों पर ये फैसला सुनाया है। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेति।
गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के नागरिकों को जमीनी या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसके लिए मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी नागरिकों को छूट आदेश 2025 अधिसूचित किया है। प्रदेश सरकार ने नवगठित मुरादाबाद के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। इनमें 468 अस्थायी शिक्षणेत्तर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से मथुरा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गौतमबुद्ध नगर में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जिले के सदर तहसीलदार प्रतीक चौहान ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
यहाँ बाढ़ संग्रहालय बने हुए हैं हमारे, वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग स्वेच्छा से पुश्ते पर भी अपना अस्थायी निवास बना लिए हैं, जिनके खान पान की व्यवस्था की गई है और कम्युनिटी किचन भी यहाँ पे चालू कर रहे हैं।
बागपत में भी यमुना में हथनी कुंड बैराज से 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सहारनपुर में भारी बारिश के कारण हेमकुंड एक्सप्रेस और शालीमार मैलानी एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक रद्द किया गया है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, मथुरा और हापुड़ में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं सहित 17 जिलों की 2.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य स्तरीय कोबुडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में लखनऊ की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3रा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में कानपुर नगर विजेता और चंदौली उप विजेता रहा। लखनऊ ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदकों के साथ 3रा स्थान हासिल किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन सहित 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब निगम द्वारा ही जेम पोर्टल के जरिए चयनित की जाएंगी आउटसोर्सिंग एजेंसियां। लखनऊ और कानपुर सहित आसपास के कस्बों के लिए 100-100 ई बसों को खरीदने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मिली स्वीकृति। नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर होगा इन बसों का संचालन। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया। तय समय सीमा में टीईटी पास न करने पर शिक्षकों को छोड़नी पड़ेगी नौकरी। और नेपाल तथा भूटान के नागरिकों को पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।